पूरा एक महीना बीत गया था जब गोयनका फैमिली और दीवा के हालात थोड़े सुधरे थे। इस बीच आर्यांश उसे मिलने के लिए बिल्कुल भी नहीं आया। ऐसा नहीं था कि आर्यांश को दीवा की खबर नहीं थी, उसे दीवा के हर एक छोटे लम्हे के बारे में पता रहता था। और साथ ही आर्यांश को ये भी खबर थी कि अब दीवा अपने दुखों से उबर रही है। एक महीना भले ही दीवा की जिंदगी में सुकून भरा रहा हो, लेकिन आर्यांश के लिए उसके बिना रहना आसान नहीं था। वो ज्यादातर समय खुद को काम में डुबोकर रखता था। इस दौरान आर्यांश अपने घर भी काफी कम गया था। सुबह सुबह जब सार्थक ऑफिस आया तो आर्यांश अपने केबिन में था। अंदर आते ही सार्थक ने पहले चिंता भरी निगाहों से आर्यांश की तरफ देखा और उसके पूरे केबिन में नजर दौड़ाई। लगता है कल रात भी ये ऑफिस में ही थे, सार्थक ने धीमी आवाज में कहा। आर्यांश का जैकेट वहां उसके केबिन में लगे काउच पर रखा हुआ था। सार्थक आर्यांश के पास गया और उसे गुड मॉर्निंग विश किया। जब आर्यांश ने उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखें हल्की सूजी हुई थीं और चेहरे पर थकान भी नजर आ रही थी। आजकल वो कुछ ज्यादा ही गुस्सा करने लगा था। मुझे शाम तक ये मेस क्लीन चाहिए। क्या तुमने नए मैनेजर के लिए इंटरव्यू लाइनअप किए? मुझे नहीं लगता जो काम कर रहे हैं वे प्रमोशन के लायक हैं, आर्यांश ने सधी हुई आवाज में कहा। मैंने इंटरव्यू के लिए एडवर्टाइजमेंट और बाकी पोस्ट डालने का सोचा था, लेकिन आपकी मॉम ने मना कर दिया। उन्होंने यही कहा कि ये पोजीशन प्रियंक की है और वो वापस आ ही जाएगा, सार्थक ने नजरें नीची करके कहा। उसे पता था कि आर्यांश इस बात पर भी चिढ़ने वाला है। क्या मतलब वापस आ ही जाएगा? सार्थक की उम्मीद के मुताबिक आर्यांश ने चिढ़कर तेज आवाज में कहा। उसने पिछले एक महीने में सिर्फ दो बार अपना चेहरा दिखाया है और ये कोई नॉर्मल पोस्ट नहीं है। अगर वो ठीक से काम नहीं कर सकता तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो मॉम का रिश्तेदार है। लेकिन इस बात को भी हम नकार नहीं सकते कि मिस्टर प्रियंक घर से काम अच्छे से हैंडल कर रहे हैं और किसी तरह की लापरवाही भी उनकी तरफ से नहीं हुई है, सार्थक ने जवाब दिया। वो घर से काम देख रहा है और मुझे उसकी जरूरत होती है तो क्या मैं उसके घर जाकर उसे बताऊं? तुम मॉम का छोड़ो और प्रियंक को एक आखिरी नोटिस दो। उसे कहो कि अगर उसने रेगुलर तौर पर ऑफिस ज्वाइन नहीं किया तो मैं उसे उसकी पोस्ट से निकाल दूंगा। मुझे पता है वो नहीं आएगा और तुम इस पोस्ट के लिए इंटरव्यू लाइनअप कर दो, आर्यांश ने सिर पकड़कर कहा। ठीक से न सोने की वजह से उसके सिर में दर्द हो रहा था। मैं आपके लिए कॉफी और नाश्ता भिजवा रहा हूँ, थोड़ी देर रेस्ट कर लीजिए, सार्थक ने उसके थके हुए चेहरे की तरफ देखकर कहा और फिर वहां से चला गया। अब तो उसे भी आर्यांश पर दया आने लगी थी। आर्यांश केबिन में अपने दोनों हाथों से सिर को पकड़कर बैठा हुआ था। उसने धीमी आवाज में कहा, उस बात को पूरे 45 दिन बीत चुके हैं और जब हमारी आखिरी बार बात हुई थी उस दिन को 32 दिन। तुमने कहा था कि तुम्हें खुद को टाइम देना चाहती हो। मैंने देखा कि तुम उन सबसे मूव ऑन कर रही हो और खुश भी रहती हो, तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि मुझे भी तुम्हारे साथ खुश रहने का हक है? मैं इससे ज्यादा टाइम तुम्हें नहीं दे सकता हूँ। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो मैं जल्दी पागल हो जाऊंगा। आर्यांश ने गहरी सांस ली और अपने मोबाइल से दीवा की लोकेशन ट्रैक की। वो इस वक्त समय के कोचिंग सेंटर में जा रही थी। शायद अब दीवा का गुस्सा कम हो गया होगा, ये सोचकर आर्यांश केबिन में बने प्राइवेट रूम में गया और फिर कपड़े चेंज करने के बाद गाड़ी की चाबियां लेकर दीवा से मिलने के लिए निकल गया। आर्यांश जब अपने केबिन से बाहर निकला तब सार्थक हाथ में ट्रे और नाश्ते के साथ खड़ा था। जब उसने आर्यांश को जाते देखा तो उसने आह भरते हुए कहा, अब तो मैं बस यही दुआ कर सकता हूँ कि डॉक्टर गोयनका का गुस्सा कम हो गया होगा और साथ रहने के लिए ना सही लेकिन वो कम से कम आपको माफ करने के लिए हाँ कर दें। आर्यांश के बिना कुछ कहे ही सार्थक समझ गया था कि वो दीवा से मिलने के लिए गया है। वहीं दूसरी तरफ दीवा समय के कोचिंग सेंटर पहुंच चुकी थी। जब से दीवा ने ज्वाइन किया था तब से वो उन स्टूडेंट्स की क्लासेस भी लेने लगी थी जो MBBS के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे। स्कूल में वेकेशन होने की वजह से समय घर पर ही था। दीवा को देखते ही वो मुस्कुराते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगा। मैंने आज तुमसे कहा था कि तुम आज घर पर रहना, फिर यहाँ क्यों आई हो? तुम कुछ ज्यादा ही डेडिकेशन नहीं दिखा रही हो इन सब में, समय ने उसे डांटते हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज में नरमी थी। आराम का मतलब खुद को रिलैक्स करना होता है और मुझे यहाँ आकर अच्छा महसूस होता है। पूरे दिन घर पर रहूंगी तो ओवरथिंकिंग होती रहेगी, दीवा ने कंधे उचकाकर कहा। दूर से देखने पर आर्यांश और दूसरे लोगों को भले ही ये लगता था कि दीवा समय के साथ आगे बढ़ रही है और उसके चेहरे पर भी हल्की मुस्कुराहट बनी रहती थी, लेकिन समय दीवा के बिना कुछ कहे ही सब कुछ समझता था। दीवा की आंखें हल्की लाल थीं। उसकी आंखों में झांकते ही समय के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। क्या रात को रोकर सोना जरूरी होता है? समय ने उसे घूरते हुए मायूस स्वर में कहा। मैं रो नहीं रही थी, रात को नींद नहीं आ रही थी तो मैं एक मूवी देख रही थी, बस इस वजह से आंखें लाल हो गई हैं, दीवा ने बहाना बनाकर कहा। उसके चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कुराहट थी। अगर पूरी रात मूवी देखते हुए बिताई है तब तो पक्का तुम्हें सोना चाहिए। और तुम डॉक्टर के पास कब जा रही हो? देखो बहाना मत बनाना, मैंने इस हफ्ते में दो बार तुम्हें दीवार को पकड़ते हुए देखा है। अगर वीकनेस फील हो रही है तो डॉक्टर से कंसल्ट करो। मेरी दादी बता रही थी कि तुम काफी थकी हुई लगती हो, एक दिन तो तुम्हें चक्कर आ गए थे और तुम गिरने वाली थी, समय ने उसे समझाया। समय दीवा से प्यार करता था इसीलिए वो उसकी परवाह भी करता था, वो उसकी हर छोटी चीज का ख्याल रख रहा था। हाँ मुझे लगा कि नॉर्मल वीकनेस है और दवाइयों का साइड इफेक्ट भी हो सकता है, लेकिन ये ठीक ही नहीं हो रहा, देखती हूँ। कल परसों तक डॉक्टर के पास जाना ही होगा, दीवा ने जवाब दिया। समय और दीवा बात कर रहे थे। वे दोनों समय के घर के आगे बने छोटे से बगीचे में खड़े हुए थे। इसी बीच आर्यांश की गाड़ी वहां आकर रुकी। दरवाजा खुला होने की वजह से दीवा ने आर्यांश की गाड़ी को देख लिया था और इसी के साथ उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। उसने जल्दी से समय का हाथ पकड़ लिया। दीवा के दिल के डर और घबराहट को समय अच्छे से समझता था। समय ने उसके हाथ को अपने दूसरे हाथ से पकड़ा और सहलाते हुए धीमी आवाज में कहा, तुम क्लास में जाओ, मैं इसे संभालता हूँ, और डोंट वरी, मैं इसे तुम तक नहीं आने दूंगा। लेकिन ये यहाँ क्यों आया है? पिछले एक महीने से आर्यांश पूरी तरह मुझसे दूर था, तो मुझे यही लगा कि शायद उसने मेरी बात को समझ लिया होगा, दीवा ने भारी आवाज में कहा। क्या तुम्हें लगता है कि इस जैसे इंसान इतनी आसानी से समझ जाते हैं? ये बस इंतजार कर रहा था कि कब तुम ठीक हो जाओ और इसकी बातों को अच्छे से समझो ताकि तुम इसके साथ जा सको। मैं एकदम श्योर होकर कह सकता हूँ कि ये दूर से तुम पर नजर बनाए हुए था, समय ने दांत भींचते हुए कहा। उसने दीवा को अंदर जाने का इशारा किया। दीवा क्लासरूम में चली गई। वहीं आर्यांश ने पीछे से उसे जाते हुए देख लिया था। वो दीवा के पीछे जाने लगा, तभी समय उसके सामने आकर खड़ा हो गया। वे दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देख रहे थे। तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है, तो अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ, समय ने बिना किसी भाव के कहा। और तुम अच्छे से जानते हो, तुम तो क्या, दुनिया का कोई भी इंसान मुझे उससे मिलने से नहीं रोक सकता, आर्यांश चुनौतीपूर्ण आवाज में बोला।
वो तुमसे नहीं मिलना चाहती है तो तुम क्यों जबरदस्ती कर रहे हो? ये तुम्हारा ऑफिस नहीं है और ना ही तुम्हारा एरिया जहाँ तुम्हारी मनमानी चलने वाली है। बेहतर होगा कि बिना किसी बहस के निकल जाओ, वरना मुझे तुम्हें यहाँ से धक्के मारकर निकालने में जरा भी झिझक महसूस नहीं होगी, समय सख्त आवाज में बोला। फिर ट्राई करके देख लो, आर्यांश ने जवाब दिया। जिस जगह पर तुम्हें इतना घमंड हो रहा है उसे 10 मिनट में खरीद कर तुम्हें तुम्हारे सामान के साथ बाहर निकाल फेंकूंगा। उम्मीद है कि अब तुम मेरे रास्ते में नहीं आओगे। आर्यांश ने समय को साइड में धकेला और आगे जाने लगा। तभी समय जल्दी से उसके सामने वापस आ गया। उसने ना में सिर हिलाकर कहा, मेरे होते हुए तुम दीवान से नहीं मिल सकते, मैं तुम्हें आगे नहीं जाने दूंगा। मैं तुमसे बहुत आराम से बात कर रहा हूँ क्योंकि तुमने उसके मुश्किल वक्त में उसे सहारा दिया है। बाकी तुम्हें मारकर भी मुझे उससे मिलना पड़े तो भी मुझे अफसोस नहीं होगा, आर्यांश दांत भींचते हुए बोला। आर्यांश की जिद देखकर तय था कि वो दीवा से बिना मिले नहीं जाने वाला था, तो वहीं समय भी अपनी धुन का पक्का था। अगर दीवा उससे नहीं मिलना चाहती थी तो वो आर्यांश को आगे नहीं बढ़ने देने वाला था। इससे पहले कि समय या आर्यांश कुछ कह पाते, घर के अंदर से समय की दादी के चिल्लाने की आवाज़ आई। शायद वो गिर गई थी और इस वजह से समय को जल्दी से दौड़कर उनके पास जाना पड़ा। वहीं आर्यांश ने उसे देखकर तंज भरे लहजे में सिर हिलाया और क्लासरूम के अंदर चला गया। उसने जाते ही कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। वहीं दीवा ने आर्यांश को अपने सामने देखा तो वो अपने हाथों को आपस में स्क्रैच करने लगी। उसे यही लग रहा था कि समय आर्यांश को आने से रोक देगा, लेकिन साथ ही वो सच भी जानती थी, अगर आर्यांश यहाँ उससे मिलने आया था तो दुनिया कोई भी ताकत उसे ऐसा करने से नहीं रोक सकती थी। वहाँ काफ़ी सारी बेंचेस रखी हुई थी। आर्यांश उनको पार करते हुए दीवा के पास पहुँचा। उसे देखते ही दीवा ने अपनी नज़रें नीची कर ली। वहीं आर्यांश ने उसकी कमर पर हाथ रखकर उसे अपने करीब खींच लिया। आर्यांश ने कुछ पल दीवा के चेहरे को जी भरकर देखा और फिर भारी आवाज़ में कहा, तुम क्यों तड़पा रही हो मुझे? क्या इतना टाइम काफ़ी नहीं है तुम्हें उन सब बातों को भूलने के लिए? या मेरे मरने के बाद तुम मुझे माफ़ करोगी? उसकी आवाज़ से गुस्सा, नाराज़गी और तड़प जाहिर हो रही थी। दीवा ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस वो खुद को आर्यांश से अलग करने में लगी हुई थी। आर्यांश ने भी उसे कसकर पकड़ रखा था। डॉक्टर के पास क्यों नहीं गई तुम? इतनी वीक और टायर्ड क्यों नजर आ रही हो? लाइफ केयर हॉस्पिटल में जाते हुए शर्म महसूस हो रही है तो किसी और हॉस्पिटल भी जा सकती थी तुम। चलो मेरे साथ, मैं अभी तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाने वाला हूँ, आर्यांश बोला और दीवा का हाथ पकड़कर उसे खींचने लगा। छोड़ो मुझे, मैं ठीक हूँ और मुझे तुम्हारे कंसर्न की ज़रूरत नहीं है। मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया है कि हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है और ना ही मुझे तुम्हारे साथ रहना है, दीवा ने चिल्लाकर कहा। आर्यांश ने दीवा के हाथ को कसकर पकड़ रखा था और दीवा ने अपना हाथ छुड़ाने के लिए पूरा जोर लगा दिया। आर्यांश ने अपनी तरफ से दीवा को थामने की कोशिश की थी, लेकिन दीवा ने जिस तरह से अपना हाथ खींचा था वो बुरी तरह लड़खड़ा गई। खुद को गिरने से बचाने के लिए दीवा ने बेंच को पकड़ना चाहा, लेकिन उसका बैलेंस पूरी तरह बिगड़ गया और वो बेंच ने जा टकराई। उसका पेट इस वक्त बेंच के कोने से लगा हुआ था। सब कुछ इतनी जल्दबाजी और तेजी से हुआ था कि दीवा और आर्यांश दोनों को ही समझने का मौका नहीं मिला। आर्यांश का चेहरा दूसरी तरफ था और उसे दीवा की इस हरकत पर गुस्सा आ रहा था। उसने अपने हाथों की मुट्ठियां बांध रखी थीं, वहीं दीवा ने खुद को संभालने की जरा भी कोशिश नहीं की। ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर वहीं सुन हो गया हो। उसे पेट के निचले हिस्से में कुछ चुभता हुआ महसूस हो रहा था और उसका शरीर कांप रहा था। एक पल के लिए दीवा को लगा कि वो सांस नहीं ले पा रही है। आर्यांश से मदद मांगने के लिए उसके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकल पा रहा था। दीवा समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसके साथ ये क्या हो रहा था।
हाँ, जिस तरह उसे बेंच का कोना लगा था वो काफी दर्दनाक था, लेकिन उसने भी नहीं सोचा था कि उसे इतना ज्यादा दर्द महसूस होगा कि उसे अपने आसपास अंधेरा दिखने लगेगा। वहीं दीवा के काफी देर तक कोई प्रतिक्रिया नहीं देने पर आर्यांश गुस्से में उसकी तरफ पलटा और चिल्लाकर बोला, क्या तुम थोड़ी देर के लिए अपनी ये जिद? आर्यांश बोलते बोलते रुक गया। उसने देखा कि दीवा अभी तक बेंच पर गिरी हुई थी और उसने अपनी तरफ से उठने की कोशिश नहीं की थी। ऐसा नहीं था कि वो खड़ा नहीं होना चाहती थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था। अंदर ही अंदर उसे एक अलग ही घबराहट और बहुत तेज दर्द महसूस हो रहा था। आर्यांश जल्दी से घबराते हुए उसके पास दौड़ कर गया। उसने दीवा को उठाने की कोशिश की, लेकिन वो फिसलकर उसकी बाहों में गिर पड़ी। तुम्हें क्या हुआ है? आर्यांश ने हैरानी और डर के मिले जुले भावों के साथ कहा। दीवा की आंखों में आंसू थे। उसने कांपती उंगली से जमीन की तरफ इशारा किया जहां खून की बूंदें गिरी हुई थी। इसी के साथ आर्यांश और दीवा दोनों एक पल के लिए वहीं सुन हो गए।